مہمان مہان دن بچرے ہمارے دھیان سنسار کا گیان گیل بھاگا بھی کار چل رہا ہے, جس میں ابھی جو آرمبک گاتھائیں ہیں ان گاتھاؤں میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آتما دس پرانوں سے جیتا ہے. کم سے کم چار پران ہوتے ہیں, ادھک سے ادھک دس پران ہوتے ہیں اور ان سے جیتا ہے. اور نشچے نئے سے یہ بھگوان آتما چیتنا روپی پرانوں سے جیتا ہے. نشچے تو واستو میں اپنا آتما گیان درشن سوبھاو ہے وہی ہے. پنچاستی کائے میں جیو کی جو پریبھاشا لکھی ہے تو اس میں یہ لکھا ہے جو جیتا تھا جیتا ہے اور جیے گا اسے جیو کہتے ہیں. یعنی سوئم اپنے سوبھاو سے ہی وہ جیتا ہے, جیتا تھا اور جیے گا. کسی کرم کے کارن کسی دوسروں کے سنیوگ کے کارن تو جیتا ہے, کوئی اسے جلائے گا کہ مارے گا یہ سمبھو نہیں ہے. یہ بات نشچے سے بتائی گئی تھی اور سمے سار کے بنداجی کار میں قریب 15-20 گاتھائیں ہیں جن میں بہت ڈنکے کی چوٹ یہ لکھا ہے کہ نج آیو سے جیوت رہیں یہ بات جنور نے کہی. تم مار کیسے سکو گے جب آیو ہر سکتے نہیں. تو وہ دس پرانوں سے جو جیون والا جیون ہے نا وہ اس کی بات ہے. میں نے ہم بے تو یہ کہتے ہیں کہ نشچے سے تو یہ چیتن پرانوں سے جیتا ہے, اس لیے ان کا تو کوئی اپہرن کر ہی نہیں سکتا. اور لوک میں جسے مرن کہتے ہیں وہ تو ان پرانوں کے ویوگ کا ہی نام ہے. تو ان پرانوں کے ویوگ میں بھی یہ نکی ہے, ہمارے شاستروں سے ہم نے پڑھ کے جانا ہے کہ یہ جو ہمارے دس پران ہیں نا تو یہ چھوٹیں گے تو ایک یا دو تین سمے میں ہم دوسروں پرانوں کے دھاری ہو جائیں گے. ہمارا یہ پریکر, میں پریوار نہیں کہہ کے جان بوجھ کر پریکر کہتا ہوں کیونکہ ترین چار کی گتی میں پریوار کا زیادہ اسینیوں میں نہیں ہوتا ہے. پریکر تو ہوتا ہی ہے نا, چاروں طرف کا ایریا میں جو جیو جنتو رہتے ہیں وہ ہمارا پریکر ہے. تو یہ پریکر چھوٹے گا تو دوسرا پریکر ہم کو اوشیہ ملنے والا ہے, کیونکہ ننتا موکش میں چلے جائیں تو ہی نہیں ملے گا. اب ہم اس کے لیے فکر کرتے ہیں کہ یہ نہ چھوٹے, اور کیوں بعد میں ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں کہ بھیا ہم تو یہ چاہتے ہیں واستو میں تو کہ ایک بار یہ چھوٹے اور بعد میں کوئی پریکر ہمیں نہیں ملے تو اس کا نام تو موکش ہے نا. ایمانداری سے ہم موکش چاہتے ہی نہیں ہیں ایسا کہنے کا ارتھ ہو گیا. میں نے ہم کو تو پریکر میں ہی چاہیے, پریکر میں ہی چاہیے. اچھے یعنی چار لوگ ہم سے ویوگ ہو گئے ہیں تو دس لوگ جڑ جائیں, ایسا ہی ہمارے چنتن کی دھارا نرنتر چلتی ہے. میں ایکاکی ایکتو لیے میں اکیلا ہی ہوں اور میرا کوئی پریکر نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی پریکر چاہیے اور نہ کوئی میرے پریکر کو جوڑ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. ابھی نشچے سے تو ایک بات نکی ہو گئی کہ کوئی کسی کو مار جلا نہیں سکتا ہے. اب یہ جو ویوہار والا مارنا جینے والا معاملہ ہے, جو ہمیں مرنے کا انت ڈر ہے, دوسرے ہمیں مار نہ دیں اس کا بھے ہے, ہم دوسروں کو مارنے کی دھمکی دے دے کر انہیں اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, یہ جو ساری چیزیں ہیں यदि गंभीरता से गहराई से विचार करें, माने इसको भी हम जीवन मरण मान लें, इस देह के वियोग को, वैसे तो नहीं है, है ना, ये तो हमारा आत्मा का कोई संयोग था ही नहीं, है ही नहीं, इससे कोई लेने देना नहीं है। मान लें तो ये भी जो तत्व ज्ञान हमें शास्त्रों को पढ़कर मिला है उसके आधार पर इतना सुनिश्चित है कि क्रमवध पर्याय की बात जो आप लोगों ने सुनी है ना, इतना सुनिश्चित है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वीरेंद्र जी, मुझे विचार बहुत आता है कि जिस सारी जनता ने बहुत प्रथमान योग के शास्त्र पढ़े हैं, प्रथमान योग की कहानी किससे पढ़े हैं ना, और जितने भी पढ़े हैं उन सब में पूर्व भक्त पर भक्त की कहानियां हैं, 10-20-25 भक्त से तो कोई कम की बात ही नहीं करता है, हैं? जिनकी भी चर्चा शुरू करो तो 10-5 भक्त आगे के और 10-5 भक्त पीछे के, आगे के ना हो मोक्ष में चले जाएं तो एक अलग बात है, उनकी चर्चा आती है और उन चर्चाओं से अत्यंत स्पष्ट है कि वो बातें नक्की हैं, भगवान की वाणी में आ रही हैं, तो उनका ठीक है कहा है, लेकिन होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो चौराहे पे बैठा हुआ ज्योतिषी नहीं है कि उसने बताई थी उसकी बात सच्ची निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हमारे सर्वज्ञ परमात्मा की बात पर हमको इतना भरोसा तो होना चाहिए ना, ये जो बातें लिखी हैं, जैसे नेमिनाथ भगवान ने कही थी ये बात कि 12 बरस बाद द्वारका जल जाएगी, तो उनने ये थोड़ी कहा था कि मैं जला दूंगा, क्यों, और कोई इसे बचा नहीं पाएगा, इसके साथ ये भी कहा था कोई बचेगा नहीं श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा, बचा नहीं पाएगा तो बाद की बात है, पहले खुद को ही तो बचा ले। मां बाप को भी नहीं बचा पाएगा, और अपन पढ़ते हैं ना कि उन्होंने वो लेके जा रहे थे, दरवाजा टूट गया, गिर गया, पहिया गिर गया, तो उन्होंने अपने हाथ से वो गाड़ी खींची तो भी नहीं, मतलब अपने बैल बन करके उन्हें बचाने की कोशिश की, यानी कोई बचा नहीं पाएगा वाली बात तो हमारे ध्यान में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, थोड़ा इस बात पर गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है कि जब ये बात द्वारका में ही कही गई थी, वहीं समोषण था और वहां सारे द्वारका वाले मौजूद थे, उन सबको नेमिनाथ पर भरोसा था, वे तीर्थंकर थे, उनके 3-3-4 कल्याणक हो गए थे, इससे सिद्ध हो गया था कि तीर्थंकर हैं, समोषण बना था उससे सिद्ध हो गया था कि इनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, ये सब बात, और सब आपस में मालूम सब यादव ही यादव थे, घबराना नहीं, बहुमत नहीं शर्म मत था, क्यों, ये तुम्हारे मथुरा से खदेड़ा था ना जरासंध ने यादवों को, तो भागते भागते पश्चिम की तरफ भागे, क्योंकि जरासंध पूरब में था, पूरब समझते हो, ये था ना अपना राजागिरी बिहार, वहां थी राजधानी उसकी, तो पूरब में तो वो था, तो ये पश्चिम की तरफ भागे, तो भागते भागते समुद्र के किनारे तक पहुंच गए, तो अब यहां भी नहीं छोड़ेगा, तो समुद्र में गिरो और भगो जैसे अंदर बहकर की, वो भी देवी देवता आए और उन्होंने रास्ता बना दिया और फिर वहां पर टापू मिल गया। वो लंबी कहानी के समय में नहीं जा, माने उन्हें इस जमीन को छोड़कर समुद्र में डूबना पड़ा, जाना पड़ा और वहां मिल गई और उन्होंने द्वारका बना दी। तो सब बेई बेई तो गए थे, कौन जाएंगे, बेई तो जाएंगे उन्हीं जाति के, उन्हीं के घर वाले, उन्हीं परिवार वाले, जनता थोड़ी भक्ति है, ये मथुरा की जनता गई होगी। एक राजा का राज आता है, दूसरा राजा आक्रमण करता है तो बेई लड़ते हैं ना, सेना ही लड़ती है ना, सैनिक तो बेई थे ना, तो वही थे, घबराना नहीं। माने वो आपस में रिश्तेदार भी सब थे लगभग। उसी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूं, इतनी बात मानो। कहा लक्ष्मण की 16,000 रानियां, बलदेव की 8,000 रानियां, क्यों कितनी होगी, 24,000 फिर उनके छोकरा छोकरी, कितने होंगे सोचो तो आप। परिवारी परिवार के लोग थे। मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि अपने ही परिवार में किसी को केवल ज्ञान हो गया था। नैमिनाथ उन्हीं के परिवार के थे और तीर्थंकर भी थे। अविश्वास का कोई कारण था बोलो कि वो नैमिनाथ की बात को कोई नहीं माने, कि नैमिनाथ को द्वारका से बैर विरोध था है? कभी कहते ही जल जाए। फिर भी जब द्वारका जली 12 वर्ष बाद, तो सारे द्वारका वाले वहीं थे, श्री कृष्ण के मां बाप भी वहीं थे। यदि उन्हें भरोसा हुआ होता तो दूसरे दिन एक आदमी द्वारका में नहीं रहना चाहिए था। भरोसा तो इसे कहते हैं, क्यों कि द्वारका वाले जल जाएंगे, द्वारका के लोग जल जाएंगे, अहमदाबाद के थोड़ी जल जाएंगे, भावनगर के थोड़ी जल जाएंगे, राजकोट के थोड़ी जल जाएंगे। वो आसपास के दूसरे गांवों में जा सकते थे ना, लेकिन नहीं गए। इसका मतलब एक को भी भरोसा नहीं था, सच्ची बात है, ईमानदारी की। तो कम से कम जो नहीं गए उन्हें तो नहीं था, और उनमें श्री कृष्ण के मां बाप का भी नाम है, दिक्कत तो ये है। वहां मरे हैं ना, बचाने के लिए ले रहे थे ना, उस दिन तक वहां क्यों रखा, श्री कृष्ण रहे वो तो मेरी समझ में आता है, रहना चाहिए। बलदेव को भी रहना चाहिए, क्यों, वे तो राजा थे, राजा ही छोड़ के भग जाए तो प्रजा का क्या होगा, उसकी तो ड्यूटी है सब कुछ सुरक्षा देना, बनाना, जो कुछ लोग भी बचे उनकी सारी व्यवस्था करना, यदि आग लग जाए तो बुझाना, और बुझ जाए तो जो बिरा घरवार के हो जाए तो उनकी व्यवस्था करना, उनकी झोंपड़ी बनवाना, ये जरूरी था ना, इसलिए बे तो रहते, बुद्धे मां बाप को तो भेज देते। पालीताना भेज देते, गिन्नार भेज देते, तीरथ पे भेज देते, बड़े बड़े शहर थे वहां भेज देते। वे क्यों बैठे थे वहां, उनने श्री कृष्ण ने उन्हें वहां क्यों रखा। अब मेरा ये संशयालु चित्त है जो संशय करता है, अब बोलो आपको कि मेरा संशय उचित है कि नहीं है उचित। उसी शास्त्र में मैंने बहुत गहराई से कम से कम 25-30 शास्त्र पढ़े हैं उत्सव संबंधी, क्योंकि वो लिख रहा था ना दैराग में काव्य, इसलिए मैं सब जान लेना चाहता था कहां क्या हुआ कैसा, तो मैंने सब पढ़े, खंगाल खंगाल के देखे। तो वहां पर जिन लोगों को ये सुनकर के सच्चाई का भरोसा हुआ तो वैराग हो गया, तो उन लोगों ने दीक्षा ले ली, किसी ने अनुमित ले लिए, किसी को सम्मत असल की प्राप्ति हो गई, और वे छोड़ के तो चले ही गए होंगे, वे काल कोई ऐसे संयोगों में रहना पसंद करेंगे। लेकिन जिन्हें भरोसा नहीं हुआ, जैसे आजकल बंबई के बारे में उड़ता रहता है ना कि फलाने सन में 10-5 साल बाद ही एकदम भयंकर बाढ़ आएगी और सारी बंबई डूब जाएगी और ऐसा एक नहीं बचेगा और इतना पानी बढ़ जाएगा, क्यों ये आधा किलोमीटर ऊपर पानी आ जाएगा तो सब डूब जाएगा। सब पढ़ते हैं ना, सब क्या ऐसे तो बकते ही रहते हैं, ऐसा तो आता ही रहता है, एक हिलता नहीं है वहां से, एक ने दुकान बंद नहीं करी, एक छोड़ता नहीं है, बोलो मेरे जी। और फिर आती है, फिर डूबते हैं, मरते हैं, सब होता है ना। जैसे ये जो आज के लोग घोषणा करते हैं, ऐसी तो आती रहती है, कई दफे आ गई लेकिन कुछ हुआ तो है ही नहीं, ये चाहता था कुछ होता क्यों तो नेमिनाथ भी उसी कोटि में गए, ऐसे तो कहते ही रहते हैं लोग, नेमिनाथ लोग थे क्यों, समूह समूह में बैठ कर उनकी दिव्य ध्वनि में ये बात आ रही थी है? तो ये साधारण लोगों की कही हुई बात थी है? मुझे तो इस बात पर भी बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने पुराणों में पढ़ा कि बलदेव ने नेमिनाथ से पूछा कि ये द्वारका क्या क्या होगा, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये द्वारका 12 वर्ष बाद जल जाएगी। मैं कहता हूं कि उनको ऐसा प्रश्न क्यों आया, आज कोई आ जाए क्यों, केवल ज्ञानी यहां हम उससे पूछेंगे कि दिल्ली कब नष्ट होगी, कि दिल्ली का क्या होगा, सोच बोलेंगे क्या सवाल है, दिल्ली हमारी राजधानी है, समृद्ध शहर है, हजारों वर्ष तक रहेगा, ये शंका क्यों हुई कि दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली का क्या, द्वारका का क्या होगा क्यों पूछा, गिरनार का क्या होगा ये क्यों नहीं पूछा, और दूसरे गांव हैं वहां छोटे छोटे उसका क्या होगा ये क्यों नहीं पूछा। नहीं पूछ सकते, मैंने नहीं लिखा, लिखना तो था, तो उन्होंने कैसे पूछा वो बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लिखा है, आपने पढ़ी हो किताब तो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ी हो तो क्या लिखा उसमें कि हे प्रभु ये द्वारका आपकी वजह से सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने बनवाई थी। ये तो आपको अपन को मालूम है ना कि तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो उस नगरी की रचना कुबेर इंद्र की आज्ञा से करता है, हर पंचकल्याणक में आप सुनते हो, और अब ये पंचकल्याणक विधान हो रहे थे तो इसमें भी सुनी होगी क्यों, तो ये रचना कुबेर की इन आदमों ने इतने बढ़िया द्वारका बना ली थी ऐसा नहीं है, ये तो मान एक जंगल में टापू पे रुक गए थे, जो पेड़ पौधे थे, थोड़ी पहाड़ी थी, जो भी एरिया रहा होगा वहां जैसी झोपड़ी मोपड़ी बना के रहे होंगे, बाद में अच्छे मकान भी बना लिए होंगे, नहीं कहता नहीं बना पाए होंगे, लेकिन वो जो असली द्वारका थी जो जली वो द्वारका तो कुबेर की बनाई हुई थी नेमिनाथ के जन्म की वजह से, तो उनको ये प्रश्न हुआ कि आप दीक्षा लेके जबन में आ गए, अब आपने वो द्वारका छोड़ दी, अब वो तो आपकी वजह से बनी थी, तो अब क्या ये प्रश्न हो सकता है क्यों, वैसे ही सहज नहीं हो सकता है, है? एक भाई आपकी वजह से बनी थी, कुबेर ने बनाई थी, अब वो कुबेर के आप जानते हैं कि बनाई थी तो ये यदि विक्रिया से बनाते हैं तो उनका वो शरीर उसमें लगा रहता है देह, और हर अंत मुहूर्त में विघटित होती है, फिर नई नई बनती है, वो बहुत श्रम साध्य काम है, आप समूह शरण में बैठते हैं भगवान के में, معلوم. تو ایک دفعہ جو پرتن ہوتا ہے نا تو کتنا, چھ گھڑی, چھ گھڑی مانے دو گھنٹہ اور چوبیس منٹ. اس میں تین دفعہ آپ کے نیچے کی کرسیاں سب کھسک جاتی ہیں اور بدل جاتی ہیں اور دوسری آ جاتی ہیں. یہ نیچے کی دری یہ سب اٹھ جاتی ہے, چلی جاتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے. سنا رمن جی, یہ میں پروچن کر رہا ہوں, تین دفعہ ایک کرسیاں غائب ہو جائیں اور پروچن چلتا رہے اور دوسری کرسیاں ایسی کی ایسی ادھر آگے لگ جائیں, ایسا ہوتا ہے. اور یہ سب ویوستھا سودھرمیندر کو کرنا پڑتی ہے, وہ بےچارا اسی میں لگا رہتا ہے کہ اب یار سموشن تو انت منہ تو بگڑ جائے گا, بس ساری ایک دم ایسی ہو جائے گی, کیا ہوگا جنتا کا. تو ابھی آخر کب تک رہے گی؟ نیمی ناتھ کی وجہ سے تھی, اب انہیں کیول گیان بھی ہو گیا, اب ان کی دیودنی بھی کھر گئی, اور اب ان کے موکش کلیانک بھی ہو جائے گا. تو یہ کب تک بنی رہے گی؟ کیوں یہ پرشن کیا تھا انہوں نے کہ پربھو میرے چت میں یہ وکلپ آتا ہے, اور اسی وقت انہیں بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے ایسا پرشن کیوں پوچھا. تو معافی مانگی کہ پربھو معاف کر دینا, میرے چت میں ایسا وکلپ کھڑا ہوا, میں نے بہت روکا لیکن روکا نہیں میرے سے, اس لیے نکل گیا. آپ چاہیں تو جواب دینا, نہیں چاہو تو من کو بھگوان چاہتے تو ہیں ہی نہیں نا, چاہے تو ان کی ختم ہی ہو گئی نا. تو اس میں آیا ان کا کہ یہ بارہ برس بعد دوارکا نشٹ ہو جائے گی. کیسے نشٹ ہوگی؟ کہ جل جائے گی. کیسے جلے گی؟ تو آگے آگے دیپائن منی کا کروز اس میں نمت ہوگا اور شراب نمت ہوگی. دیپائن کون تھا جانتے آپ؟ کون منی؟ ایک منی تھا دیپائن. ارے دیپائن بلدیو کا سگا بھائی تھا, ماں جایا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ شری کرشن کے بھائی بلدیو تھے نا, شری کرشن کے پتا جی کا نام وسودیو, اور وسودیو کی دو رانیاں, ایک رانی کا نام روہنی اور دوسری رانی کا نام دیوکی. دیوکی کے شری کرشن اور روہنی کے بلدیو اور دوسرا دیپائن. سمجھ میں آیا نا؟ اتنا ہی پرتمان یوگ آپ نے نہیں پڑھا. اور تب بھی راجکمار ہی تھے, تب منی نہیں تھے, تب بھی منی نہیں بنے تھے, یہ راجکمار بنے بیٹھے تھے, وہیں سن رہے تھے. ان نے اپنا نام سنا تو انہیں بہت دکھ ہوا, اور پھر انہوں نے دیکھا لے لی, اور پھر وہیں سے بہار کر گئے کہ میں یہاں دوارکا کے پاس میں رہوں گا ہی نہیں, بہت دور چلا جاؤں گا. سمجھ میں آئی نا؟ تب گھر ہی گھر کے تھے. تیرتھنکر کی دیویہ دھنی شکتی ہے تو سب لوگ وشواس ہی کر لیتے ہوں گے. یہ بتاؤ, کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ چھوڑ کے آدھی پردی جو پیسہ کھڑے ہوئے, بیچ بانچ کے مکان جائیداد دکانیں, وہ چلے گئے دوسرے گاؤں میں. کچھ ایسے تھے کہ کیا کریں کیا کریں, جائیں نہیں جائیں. کچھ ایسے بھی تھے کہ یہ جو جا رہے ہیں نا, ان کی دکانیں اور مکان وہ ساری سمپتی فرنیچر آدھے پردے بھاؤ میں سستے سے سستا خرید لو, کیونکہ خریدنے والے ہیں ہی نہیں. یہ تو جن کو تو جو دو پیسے ملیں گے تو لے کے جائیں گے اور اپنا رب پتی بن جائیں گے. اور کیا پتا پھر نہیں جلی تو اپنا رب پتی رہ جائیں گے, اور یہ اپنے انتظام کر لیں گے جو کچھ کر لیں گے. یہ سب لکھا ہے میں نے. یدی میں تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں آج آشچری نہیں ہوتا. میں نے لکھا ہے سب کہ اونے پونے داموں میں اور ان نے سمپتیاں خرید لیں. मैंने ऐसी भी दृष्टि वाले लोग वहां मौजूद थे। उसी समोसरण में जिन्हें वैराग्य हो गया तो दीक्षा ले ली, ऐसे भी थे अनुमृत ले लिए, सम्मत संघ की प्राप्ति होगी, गांव छोड़ के चले गए, ऐसे भी हो गए थे, तो ऐसे भी थे। देखें कौन जलाता है, हमारे जिंदा रहते कि कोई हाथ लगा के तो देखे, समझता क्या, जिसके मुंह में आता है चाहे जो कुछ कह देते हैं। कहने के पहले दो मिनट सोचना तो चाहिए, ये नहीं सोच रहे थे कि तीर्थंकर भगवान की देवी धुनी में आया है, किसी ने कही हुई बात नहीं है, देवेंद्र जी वीरेंद्र जी है, किसी की कही हुई बात नहीं है, दिव्य ध्वनि में आई है। कैसे हम इतना बढ़िया इंतजाम करेंगे कि एक तो आग लग ही नहीं पाएगी, शराबबंदी कायम। एक दफे गुजरात में तब शराबबंदी हुई थी, और एक दफे जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तब हुई थी, लेकिन तब शराबबंदी थी तो अच्छा काम था ना नरेश जी। शराब में अनंत जीव होते हैं इसलिए नहीं, शराब के निमित्त से हम जल जाएंगे इसलिए, समझे ना, अपने स्वार्थ के कारण शराबबंदी की गई थी। अब बुलाओ उस दीपायन को, तब तक तो वे दीक्षा ले चुके थे। क्यों दीपायन को बुलाया गया, तुमने सुना दिव्य ध्वनि में क्या आया? कहां साहब सुना, हमने भी सुना, क्या सोचा तुमने, क्या सोचा कि साहब हम तो यहां से छोड़ के जा रहे तो 12 वर्ष तक यहां को मुंह नहीं करेंगे, पर हजारों मील दूर जितने दूर जा सकेंगे चले जाएंगे। अच्छा सोचा, यदि नहीं सोचते तो फिर हमें सोचना पड़ता कुछ। ऐसे लोग भी वहां थे, कौन थे नाम नहीं बताऊंगा, जिनकी अधोगति होनी थी, ऐसे ही लोग थे ना, और कौन सोचेंगे ऐसे। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई उसका विरोध जिसके चित्त में आएगा तो वो उसकी क्या गति होनी होगी, ये कल्पना करो है? ये प्रथमानी योग हमने ये सब पढ़ा तो हमें उस दिन प्रश्न क्यों नहीं खड़ा हुआ कि सब नक्की था, कैसे नक्की था, हम फिर हम कौन सी पार्टी में हैं? हम समोसन में बैठे थे मान लो, और हमने सुनी दिव्य ध्वनि में कि नहीं ऐसी कहने से क्या होता है, ये सब बातें होती हैं तो बदल जाती हैं, उपाय भी हर चीज के होते हैं, उपाय भी कर लिए जाते हैं, क्यों और ये राजा लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं तो ऐसे ही थोड़ी जेल जाने देंगे, और वहां वहां क्या है, इतनी बढ़िया जगह वहां कैसे आग लग सकती है, क्यों चार हाथ खोदो तो पानी, क्योंकि समुद्र के में एक टापू था ना, उसमें तो जो बसे थे तो चारों तरफ पानी पानी था, और उसमें भी नजदीक नीचे पानी, चार हाथ खोदो तो पानी। जैसे यहां पे कई गांव ऐसे होते हैं ना, कुएं से पानी भरना है तो रस्सी की जरूरत ही नहीं, हाथ से ऐसा भर के निकाल देते हैं। यहां कोई शहर होंगे ऐसे, अमेरिका में मियामी वगैरह ऐसे दक्षिण अमेरिका में जो है ना, जो मैंने देखे हैं कि चार हाथ जमीन पे पानी है। हसनापुर में है ऐसा, देखो जिक्र हसनापुर में, माने पानी की इतनी बहुतायत है, आग लगेगी तो बुझाने में क्या देर लगती है, लगेगी कैसे है? तो इंतजाम करके रखा हो, क्या इंतजाम करके रखा, चारों तरफ इंतजाम ही इंतजाम है ना, अब पानी वहां से उठा के घर में रखेंगे है? कितना घर पे, घर में कितना रखते पानी बुझाने के लिए, जहां खोदो वहां तो निकलता है, खोद रही होंगे कुएं, نکلے گا تو لگا دیں گے پانی, اس میں کیا ہے. میرے کہنے کا ارتھ ہے کہ جو چیز سامنے آئی ہے پرم ستیہ, اس کو سویکار نہیں ہوا اور اس کا اندر سے ورودھ جگا. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ انت کال سنسار میں رہنا ابھی باقی تھا, اس لیے ورودھ بھاو جگا, نہیں تو سویکار بھاو ہوتا. کیوں صاحب بھی سب لوگ جل گئے, کوئی اپائے تھا؟ ویرندر جی جو دیکھا لے گئے ان نے تو بہت بڑھیا اپائے لے لیا. اب جن نے دیکھا نہیں لی اور سمندر سے اور انوت لے لیے تو بے کیا کرے, ان کے پاس کوئی اپائے ہے کہ 12 برس بعد سمادھی مرن لے کے اس میں جل جائیں؟ آپ لوگوں کو سوچتا ہے کچھ اپائے؟ انہیں صلاح دینا چاہیے. آپ انہیں کیا صلاح دیتے؟ میں نے دی ہے اس میں صلاح, راستہ بتایا ہے. کیا راستہ تھا؟ ارے بھائی دوارکا چھوٹی سی جگہ تھی راجدھانی, اور ہندوستان اتنا بڑا ہے, وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے نا آپ, یہاں سے بمبئی سے دلی, دلی سے بمبئی, تازہ چلے جاتے ہو نا, ویاپار بدل لیتے ہو, دکان بدل لیتے ہو. اور مجھے 12 برس کا سمے ملا تھا, 12 برس میں تو ایک ایک اینٹ لے جانا چاہتے تو لے جاتے, کچھ چھوڑنے کی ضرورت کہاں تھی بھائی صاحب. ایسی درگھٹنائیں ہوتی ہیں جب بھی, تب 2 منٹ نہیں ملتے ہیں. طوفان آتا ہے, آندھی آتی ہے, بھوکمپ آتا ہے, اوپر سے انوبم گرتے ہیں, ہمیں 2 منٹ بھی نہیں ملتے ہیں. ایسی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ تو اچانک ہی ہوتی ہیں, اور اتنی بڑی درگھٹنا ہونے والی تھی وہ 12 برس پہلے پتا چل گیا, اور پتا بھی وشوست سوتروں سے. ایسا نہیں کہ ایرے گہرے نتھو گہرے نے کسی پاگل نے کہہ دیا ہے. کہ سڑک صاحب جوتسی نے بتا دیا ہے, ایسا نہیں تھا. تیرتھنکر بھگوان کی دیو دھنی میں یہ بات آئی تھی 12 برس پہلے. کھانا اپائے کیا تھا؟ میرے جیسے پنڈت اس وقت نہیں ہوگا کوئی, وہ بتا دیتا کہ چھوڑ دو نا دوارکا, کیا رکھا ہے دوارکا میں, اتنا بڑا دیش ہے, کہیں بھی چلے جاؤ, سمے سکر چلے جاؤ, یہاں چلے جاؤ, جنتا کو کیا ہے, کوئی جنتا کو تھوڑی کوئی روکتا ہے. یہ راجا راجا آپس میں لڑتے رہتے ہیں, جنتا تو سارے دیش میں کہیں بھی جائے, کہیں بھی بزنس کرے, دھندا کرے, کیوں آپ جانتے ہیں نا, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے پاس بھی اپائے تھا کہ صاحب بہت بڑھیا انہوں نے جن مندر بنائے تھے یہاں, اب انہیں چھوڑ کے کیسے جاتے؟ ارے وہاں بنا لیتے, یہ تو جل جانے والے ہیں, نہیں بنتے وہاں. یہ اپائے تھا کہ نہیں تھا؟ یہ جو میں اپائے بتا رہا ہوں وہ آپ کو جستا ہے کہ نہیں جستا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی ہونہار ہی ایسی تھی. اب اس سے بڑا تو کچھ ہوتا نہیں. اپن کہتے بھیا اب ہم تم سے کہہ رہے تم نہیں سمجھتے ہو تو بھگوان تو تمہیں سمجھانے آئیں گے نہیں. یہ پنچم کال میں بھگوان تو آتے ہی نہیں ہیں, تمہارے بھاگ میں تو ہم ہی بدے ہیں جیسے ہیں, اچھے بڑے ہیں جیسے ہیں. نہیں یہ تتو کی بات کون بتائے گا بولو؟ بھگوان ہوتے تو بہت اچھا رہتا, ہم بھی کہتے ہیں بہت اچھا رہتا, لیکن ہوتے کیسے؟ تم جیسے ابھاگوں کے لیے بھی ہوتے, ان کے لیے ایسے بھاگوان جیو چاہیے جن کی دیو دھنی کا لابھ انہیں سننے کو ملے. ہمارے پلے میں وہ پنیہ نہیں ہے نا. ارے بھائی صاحب یہ سننے کو مل رہی ہے, یہ بھی کم پنیہ مت سمجھنا. लाखों अभागे ऐसे भी हैं कि उन्हें एक तत्व ज्ञान भी सुनने को नहीं मिलता है। हमारे गए महाराज, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। मुख्यमंत्री बुलाता है उसके यहां जाता हूं, जो मुख्यमंत्री बुलाएगा उसके यहां जाऊंगा, मध्य प्रदेश के ने बुलाया तो उसके यहां गया, प्रधानमंत्री बुलाएगा तो उसके यहां जाऊंगा, बिना बुलाए मैं कहूं नहीं जाता। लेकिन जैन धर्म में तो शास्त्र में ये लिखा है कि मुनिराज बुलाए पे कहीं जाते ही नहीं, भगवान के दर्शन करने हो तो बिना बुलाए ही जाते हैं। क्यों? ये किसी को नहीं, किसी ने नहीं, कोई नहीं जानता होगा इस देश भर में, है? कोई जानता तो होगा, कहता नहीं है, कहने के लिए जरा चौड़ी छाती चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि जितने दिन जी लिए सो जी लिए, हैं? अब आगे जो होगा सो हो जाएगा। क्यों? तो कह सकते हैं कि अरे भाई क्यों साहब बोलो, जैन धर्म क्या कहता है, जैन धर्म का वस्तु का स्वरूप क्या है, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया है? तो ये जो हमको मिल रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री का समागम मिल गया, ये मूल तत्व ज्ञान मिल गया, ये जिनवाणी माता मिल गई, तो हम भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। वो तत्व ज्ञान हमारे पास भी हमेशा भी विद्यमान मौजूद है और उसका लाभ हम ले सकते हैं। देखो, हम भगवान पारसनाथ तेरे ही भरोसे मैंने छोड़ दी नाव, क्या बोलते हैं बोलना, जोर जोर से बोल, वहां तो बहुत अच्छी तरह बोलता है गा करके, गा के बोल ढंग से,
मैंने तेरे
सचमुच डाल दी है, सचमुच डाल दी हो तो समझ लेना गारंटी से डूबेगी। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कि हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम अपना बिगाड़ने वाले हो, क्योंकि तुमने पारसनाथ के भरोसे नैया छोड़ दी। पारसनाथ तो मोक्ष में बिराजे हैं, सच्ची बात है कि नहीं? और हमने पहले दिन पढ़ा था कि मुक्त किन्हें कहते हैं, जो जी मोक्ष में चले जाते हैं फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, तो वे संसार में आएंगे नहीं, तो तेरी नैया को कैसे बचाएंगे बताए? तो अब तो गारंटी से डूबे ही नहीं, किसी को भेज देंगे, क्यों? वे वहां से ऑर्डर लिखेंगे, फोन कर देंगे कि बेटा तुम जाके बचाना उसे, वो मेरा नाम ले रहा है, नहीं तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। अरे बे, किसी से कुछ कहते ही नहीं, तो अनंत काल तक के लिए अपने में समा गए, उन्हें कोई विकल्प भी नहीं है, हैं? काल में आई ना, तो तुम्हें से वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के नाम नैया छोड़ेगा, अनिवार्य में भगवान करता धरता है। अब वे भगवान तो मोक्ष में बैठे थे, ये भगवान तो यही बगल में बैठे थे नैमिनाथ तो द्वारका के, और उन्हें किसी दूसरे ने नहीं, उन्हें पक्का पता था ना कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी, वो तब तक वे रहने वाले भी थे। मोक्ष तो भी मालूम 700 वर्ष बाद गए, 700 वर्ष तक उन्होंने उपदेश दिया, तो रहने वाले भी थे, वे ही बचा लेते, कि मैं बचा लूंगा, मैं जब तक मौजूद हूं तुम्हारे भाग्य से, वे तो कहते कोई नहीं, कोई माने मैं भी नहीं बचा सकता। ये जैन धर्म, असली जैन धर्म ये है ये आज हमारे पास मौजूद है और हम नहीं समझ रहे, हम नहीं मान रहे। ये भगवान की कही हुई बातें हैं ना, ये तो दिव्य ध्वनि की आई हुई बातें हैं ना, हम अपने घर की थोड़ी बता रहे हैं आपको, ये तो उसी की बात हम आपको बता रहे हैं ना कि आई है। उनको नहीं था भरोसा। भगवान के समोसन में सब बैठे होते हैं तो सब ऐसे ही भरोसे वाले होते हैं, ऐसा ही नहीं है। कुछ ऐसे ऐसे भी पहुंच जाते हैं और वो ऐसे भी बैठे होते हैं। ये लिखा तो है कि कोई ऐसा नहीं जाता, अभद्र नहीं जाता, विरोधी नहीं जाता। हाँ तो विरोधी नहीं जाते, ये सही बात नहीं। विरोधी नहीं जाते का अर्थ यह है कि जिसे मन में विरोध है वो काय को जाएगा, क्या आंख में नहीं ना? जिसे विरोध है वो क्यों जाएगा? तीव्र विरोध जिसे है वो नहीं जाएगा ना। हमारे में भी हमारा जो विरोध जिसे है वो क्यों आएगा? नहीं आएगा। किन्नी साहब आते हैं, आप आते हैं विरोधी, अरे बे उनकी विरोध में वो जोर नहीं होता, उतना जोरदार विरोध नहीं होता। अंदर में साम्य भाव भी होता है, थोड़ा वो भाव भी होता है, क्या जिज्ञासा कि देखें तो क्या कहते हैं, क्या देखें तो क्या कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा का भाव भी होता है। वो जिज्ञासा के भाव से आगे वो विरोधी नहीं था, विरोधी होता तो आता ही नहीं, तो वे नहीं आते। ये लिखा है, ये तो सामने विरोध करेंगे, ये आ जाएंगे तो वो क्यों आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो वस्तु का स्वरूप जो हमारी जिनवाणी में आज हमारे लिए उपस्थित, प्रथमा योग की बात में आपसे कह रहा था, सब प्रथमा योग में ऐसे किस्से लिखे हैं कि इसमें क्या है साहब, ये तो 12 बरस की बात है, तो 12 बरस ही तो कोई भी जान लेता है, साधारण सा ज्योतिषी भी जान लेता है, क्यों? तो बोलो कितनी चाहिए तुम्हें, कितने बरस की चाहिए, कितने बरस की कोई नहीं जान सकता है तुम्हारे हिसाब से। भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर, इन दोनों के बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर है, जानते ना? एक कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है? एक कोड़ा कोड़ी कड़ूर का कड़ूर में गुणा करो, जो गुणनफल आए उसका नाम कोड़ा कोड़ी। नहीं आया समझ में? एक कड़ूर, 10 कड़ूर, 1000 कड़ूर, 1,00,000 कड़ूर, कड़ोर कड़ोर, समझ में आई? कड़ोर कड़ोर माने कूड़ा कूड़ी। अमृतसर में गया हुआ था और मुझे डोली में जा रहा था तो रास्ते में आप लोग यात्री मिलते थे तो बोले पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते। तो डोली वालों की समझ में आ गया कि कोई पंडित है, मैं तो नहीं बताया था कि मैं पंडित पंडित हूं, उनकी समझ में आ गया कोई ये पंडित जी है, जो आता है वो पंडित जी कहके नमस्कार करे। बोले आप पंडित जी हो? मैंने कहा हाँ मैं पंडित। एक हमारा प्रश्न है, मैंने कहा भैया ये कोई हमें छोड़ेंगे नहीं, जहां भी जाएंगे वहां प्रश्न। अब तू पूछ ही ले, तुझे पूछना है। वो उसने पूछा प्रश्न कि जैनियों के मुनि कोड़ी कोड़ी क्यों होते हैं, कोई अच्छे क्यों नहीं होते, क्या वो कोड़ी का मतलब? कुष्ठ रोग से पीड़ित समझ रहा था कि आप लोग बोलते रहे तो कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, और उन्हें अर्घ चढ़ाओ, उन्हें अर्घ चढ़ाओ, ये सब मुनि कोड़े ही कोड़ी। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर बरस नहीं, कितना अंतर था, और सागर कितना बड़ा होता है मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूं, वो बहुत बड़े बड़े गड्ढा खोदना पड़ते हैं। और वो तत्काल के 7 दिन के पैदा हुए बच्चे भेड़ के, उनके दूसरा टुकड़ा ना हो सके ऐसे बालों के टुकड़े करो, फिर उन्हें भरो, फिर 100-100 साल में एक एक निकालो, फिर दूसरे में, बहुत झंझट है। ये किसी करुणा नियोग वाले से वो बच लेना, मतलब इतना समझ लो तुम कि बहुत लंबा काल है, اتنا پہلے کال کرم معلوم کتنے کے بنتے ہیں؟ 70 کوڑا کوڑی کا. 70 کیا کہا ہے؟ کتنا ہے مغنی کرم کا اتکرشت استھتی؟ 70 کوڑا کوڑی جوڑی ہے. 70 سمجھنا. خیر دو بھی سمجھنا, بہت انتر ہے. ایک کوڑا کوڑی ساگر بہت لمبا کال ہے اور یہ بہت کم ہے جو ہمیں کرم بنتے ہیں. کرم ابھی نہیں بنے اتنے لمبے ہمارے ایک کوڑا کوڑی ساگر کے. تو بھگوان مہاویر کا جیو, یہ ماریچی مہاویر کا جیو ہوگا اور اس کی ماں کا نام ترسلا اور پتا کا نام سدھارتھ ہوگا, یہ بتا دیا تھا نا آدی ناتھ نے, بتا دیا تھا. تو کیسے معلوم؟ یعنی وہ ترسلا کے ساتھ شادی نہیں کرتے سدھارتھ تو آدی ناتھ جھوٹے ہو جاتے. کیوں؟ تبھی سگائی ہو گئی تھی کیا؟ ترسلا کی اور سدھارتھ کے جنم بھی نہیں ہوا تھا. سگائی تو بہت دور کی بات ہے, اور اس وقت انہوں نے بتا دیا تھا نا, اور اسے بدلا جا سکتا تھا. یعنی بدل جاتے تو کیا ہوتا کہ بھگوان مہاویر کے پتا جی دوسرے ہوتے اور اماں دوسری ہوتی. یہ نہیں ہوتے. اتنا تو شاستر میں لکھا ہے, اتنی لمبی آگے کی بتا دی. اب وہ کرم بن گیا اس کے حساب سے نہیں ہے. کرم تو بہت تھوڑے سے کال کا بنتا ہے, یعنی وہ پہلے سے نکی ہے اور کرم کو بعد میں بندھنا ہے. مانے کرم کو اس کے انوسار بندھنا پڑے گا, کرم کے انوسار اسے جنم نہیں لینا پڑے گا. بس میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ میں آئی؟ جیسا کرم کا ادے آئے گا وہاں آپ کو جنم لینا پڑے گا. اس دھوکے میں مت رہنا, جہاں آپ کو جنم لینا ہے وہاں کا کرم کو بندھنا پڑے گا. سمجھ لی؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پرنام سنبھال لو, پرنام سنبھال لو, اچھی گتی ہو جائے گی, تم نرک میں جانے والے ہو گئے تو مرتے وقت پرنام سدھر گئے تو سورگ میں چلے جاؤ گے. سردا بیٹا سولی پہ بھلا کرے بھگوان, یہ پنڈت لوگ اپدیش دیتے ہیں. سنبھالو سنبھالو سنبھالو, انت میں بھی سنبھال لو گے تو کام چلے گا. ابھی جتنا پاپ کرنا ہو کر لو, پھر انت میں سنبھال لینا بس. کہ پنڈت جی تم سنبھلوا دیو. ہاں ہمیں بلا لیا, ہم سنبھلوا دیں. ارے بھائی انت کال پہلے نکی ہے کہ تم کہاں جاؤ گے اور اس وقت تمہارے کیسے پرنام ہوں گے, یہ بھی نکی ہے. کیا سنبھال لیں؟ بدل لیں. ہمیں نرک میں جانا تھا سورگ میں چلے جائیں گے, پھر نرک میں کون جائے گا ہماری جگہ؟ وہ سیٹ خالی رہ گئی, اور سورگ میں سیٹ خالی پڑی ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا. سارے پنڈت اپدیش دیتے ہیں, مہاراج اپدیش دیتے ہیں, میں چیلنج کر رہا ہوں. بولو بدل سکتا ہے کوئی؟ تو پھر کل سے اپدیش دیں کہ نہیں دیں؟ دینا ہو تو دو, نہیں دینا ہو تو نہیں دو. تم ایسا سفید جھوٹ بول رہے ہو, اس سے نہیں دو تو اچھا. میں سچی گھٹنا سناتا ہوں. میں جب پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ایک ودیارتھی پڑھتا تھا, وہ بھی پنڈت بن گیا, میں بھی پنڈت بن گیا. پھر اس نے پنڈت آئی چھوڑ کے اور وہ مشین چلانا شروع کیا. کیا درجی کی مشین ہوتی نا کپڑا سینے کی, وہ ایک گاؤں میں تھا. وہ گاؤں مہرونی ہے نا للت پور کے پاس, وہاں کی گھٹنا ہے. نام مام مجھے سب معلوم ہے, سب بتاؤں گا. تو وہاں سے میں مڑاور آگے پنچ کلیانک میں جا رہا تھا. بہت پرانی بات ہے, 60 پرانی بات ہے. پنچ کلیانک میں جا رہا تھا تو میری بس اسی گاؤں میں جا کے خراب ہو گئی. تو رات بھر مجھے وہاں رہنا پڑا. تو مجھے معلوم پڑا کہ میرا سہپاٹھی یہاں رہتا ہے, اس کا نام تھا سری چند. کیا؟ تو میں اس سری چند کے گھر کھوجتا کھوجتا اس کے گھر پہنچ گیا اور اسے گھر رکا. اب رکا جب دو سہپاٹھی بہت دنوں بعد ملتے ہیں تو دنیا بھر کی باتیں تو ہوتی ہی ہیں, رات باتوں ہی باتوں میں نکل جاتی ہے. تو میں نے کہا بھائی تو نے دھرم کا کام چھوڑ کر, تو پڑھاتا تھا بہت اچھا, چھڑالا پڑھاتا تھا, سب کرتا تھا, پرچن کرتا تھا, तो ये छोड़ करके ये धंधा तुमने कहां शुरू किया है पेटीकोट ब्लाउज सीने का? नहीं बेटा मैंने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहले क्या है इसमें, कुछ दम तो है नहीं, इस पंडित लोगों को कुछ आता तो जाता तो था नहीं, किन पंडितों को नहीं आता था कुछ? बोले ए दौलत राम, ए दौलत राम का नाम लिया तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसकी। बोले देखो ये लिख के गए, सुतदारा हो न सीरी सब स्वारत के हैं भीरी। अब वैसे ही तो घर में लड़ाई होती है, पति पत्नी की नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बनती है, इनने और आग लगाई कि सुतदारा हो न सीरी सब स्वारत के हैं भीरी, घरों में आग लगा दी। वैसे ही तो लोग ध्यान नहीं रखते अपने स्वास्थ्य का, वो जरा ज्यादा ध्यान रखता था, व्यायाम व्यायाम ज्यादा करता था हैं? और फिर इन्होंने लगा पल फिर रात मल थैली की कस बसा देते मैली, नब द्वार बहे घिनकारी अस दे करे के मियारी। बोले सब लगा करके लोगों ने सब सत्यानाश कर दिया। मैंने बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, तो अंत में कहा मैं भैया तेरे को बहुत धन्यवाद देता हूं कि तूने बहुत जल्दी समाज का पिंडा छोड़ दिया। क्यों? यदि तू और ज्यादा दिन समाज में रहता तो ना मालूम कितनों को बिगाड़ता। अब तू बेटा बिलाओस सिटी को छिए जा। अभी भी वो होगा कहीं ना कहीं, मुझे पता नहीं कि वो मर गया कि जिंदा है। 7 साल पुरानी बात है, बताऊं संसम्मत, इंदिरा गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और वो कांग्रेस वहां पर मरावड़ा पंच कल्याणक में कांग्रेस का अधिवेशन था, तो वो आई थी उस पंच कल्याणक में, मैं भी गया था उस पंच कल्याणक में, मेरा सबसे पहले प्रवचन भी हुआ था उस उम्र में 60 साल पहले। ऐसा शास्त्र पढ़ करके ऐसा जिनकी समझ में आए हैं, जो दौलत राम जी आप सबके कंठ के हार बने हुए हैं, समय सार पे कोई शंका करे तो करे, लेकिन आज तक 6 डाला पे किसी ने शंका नहीं की होगी जैन समाज में, क्यों सब एक स्वर से 6 डाला को प्रमाणिक मानते हैं ना, और दौलत राम जी को भगवान जैसा मानते हैं। दौलत राम जी, पंडित टोडरमल जी, जयचंद जी छावड़ा, ये हमारे लिए आचार्यों से कम नहीं है, महान काम किए। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इनके द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ पढ़ करके हमें बताई हैं, उनने भी इनसे लाभ लिया है, क्योंकि वे बाद के हैं ना, स्वामी जी बाद के हैं, ये पहले के हैं, तो पुराने लोग पहले लिख के रख जाएंगे तो नए लोग पढ़ेंगे, उसमें कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं है कि भाई स्वामी जी की छोटे हो गए क्या कि उनकी किताब पढ़े, ऐसा नहीं, छोटे बड़े का सवाल क्या, यदि वो किताब लिखी गई पहले तो वो पढ़ लें। स्वामी जी ने धर्म के 10 लक्षण पढ़ी थी, क्रमबद्ध पर्याय भी पढ़ी थी और बहुत प्रशंसा करी, हमारी बहुत पीठ ठोकी, क्या तुम्हें छोटे हो गए उनने हमारी किताब लिखी पढ़ी तो? क्यों? ऐसा कोई नहीं है, हम तो कहते हैं उनने पढ़ी तो कोई गलती होती तो निकल जाती, बता देते कि पंडित जी ये ठीक कर लो। एक बात बताई थी उनने कि पंडित जी इसमें और सब आ गया है, जन्म क्षण की बात नहीं आई, प्रवचन साल में जन्म क्षण की बात आती है, अगले एडिशन में आ जाएगी, हमने अगले एडिशन में डाल दी, फायदा हुआ ना। क्यों? कि हर पर्याय का जन्म क्षण नक्की है, कौन पर्याय कब पैदा होगी, किन परिस्थितियों में पैदा होगी, सब नक्की है। ये बात एक दफे हमारी श्रद्धा में आ जाए तो समझ लो हमने भगवान के समूषण का पूरा पूरा लाभ उठा लिया। क्या यही तो असली बात समझने की है कि उनके केवल ज्ञान में अनंत काल तक की सारी चीजें किसका क्या होगा ये सब आ गया। मैं इन बच्चों से कहता हूं कि सिद्धार्थ की शादी त्रिशला से होगी ये इतने पहले नक्की हो गई थी, अब तुम अकड़े अकड़े काहे पे फिर रहे हो, मैं तो देखूंगा मैं तो देखूंगा मैं देखूंगा, क्या देखेगा कि 5 रुपए की हंडी खरीदते हैं तो ठोंक बजा के देखते लेते हैं, और जिंदगी भर का सौदा है ऐसा ही कर लूंगा। मैं कहा बेटा भी थोड़ा मौका मिला है, 50 साल पहले ये मौका नहीं था कि कोई आदमी जाके लड़की देखे, मिल जाए तो बहुत भाग्य होता था, और 50 साल बाद भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि वो लड़कियां कम होने लग गई हैं, हम हत्यारे हो गए हैं ना, उन्हें मार डालते हैं जन्म पेट में, तो फिर ऐसा ही होने वाला है, थोड़ा मौका मिला है तो ज्यादा मत अकड़ो। नहीं साहब बिना देखे तो हम नहीं करेंगे। मैं कहा देख आओ कोई बात नहीं है, देख आओ, लेकिन ठोकना बजाना मत, ना ठोक के बजा के लेते हैं ना वो हंडी, नहीं तो ठुक पिट के आओगे। कैसी बात करता है, अपनी सारी जिंदगी की साथिन के साथ जो धर्म पत्नी है होने वाली है उसको तू उससे एक फूटी हांडी से तुलना करता है, शर्म नहीं आती क्यों? के साहब उसका नक्की होगा उन सिद्धार्थ का, तिसला के साथ शादी करना पड़ेगी, हमारा तो अभी नहीं है ना, हम तो नक्की करेंगे। अरे बेटा सबका नक्की है, तो उनका तो शास्त्र में आ गया, ऋषभ देव ने बता दिया था, हमारा कौन से भगवान ने बताया? अरे इतिहास सबका होता है, लिखा जाता है राजाओं का, होता तो हमारा भी इतिहास है क्या नहीं है? अरे कहीं जन्म होना पैदा होना मरना करना आना जाना यही तो सब इतिहास में होता है, तो हमारा भी सब हुआ था, लेकिन हमारा इतिहास लिखा नहीं जाता, राजाओं का लिखा जाता। वो तीर्थंकर है ना, इसलिए उनकी भगवान की वाणी में बात आई, तुम्हारी क्या गिनती है? लेकिन नक्की सबका है, हम एक से जान सकते हैं कि एक का नक्की है तो सबका नक्की है। हमारी श्रद्धा में ये याद आए तो कितनी आकुलता कम हो जाएगी। अरे हिंदुओं में भी कहते हैं कि जोड़ियां तो भगवान के घर से बन के आती हैं, तू कौन होता है बनाने वाला? कहते कि नहीं कहते हिंदू, अपने जैन धर्म में भी तो ये नक्की है ही है, हैं? और हमारे पहले तो बहुत सहज भाव से चलता था, कोई ऐसा देखा देखी होता नहीं, होती नहीं थी, और अब ये देखा देखी हो रही है तो क्या हालत हो गई है विमल जी? आज कुछ 6-6 महीना तक देखते हैं शादी होती है, 6 महीना नहीं चलती, 6 महीना में तलाक होने लगता है, हैं? पर हम जैसे लोग हैं जिनने जिंदगी में पहले देखा ही नहीं था, तुमने देखा था? घबराओ मत, मैंने नहीं देखा था, और हो गई है, और अच्छी चल गई, चल रही है, कैसी क्या कोई दिक्कत नहीं आई, और ये अच्छे अच्छे देखकर देखने वालों की दुर्दशा हमने देखी है, है? क्यों क्या होता है तुम्हारे तुम्हारे में क्या ताकत है, तुम क्या देख सकते हो, तुम क्या निर्णय कर सकते हो, आप समझ गए ना? एक मिनट में ऐसा क्या समझ में आने वाला है? ऐसा नहीं था कि मेरे से किसी ने नहीं कहा था कि देख लो, ऐसा नहीं था कि उस वक्त देखते नहीं थे, मैं ही नहीं गया, मेरे पिताजी देख के आए थे, उन्होंने कहा बढ़िया है बेटा, सब बढ़िया है, हमने सब देख ली तो ठीक है, 8 दिन बाद तो बारात जानी थी, मैं 8 दिन बाद देख लेंगे, नहीं देंगे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो देखना उस वक्त बहुत कठिन था, कोई बड़ी बात थी या किसी तरफ से कोई बाधा थी, ऐसा कुछ नहीं था, समझे ना? सब सबकी तरफ से ऑफर थे, हैं? लेकिन मैंने क्या देखना, क्या करना इन संयोगों का, तूने कौन कौन से संयोग देखे हैं? मैं तो ऐसा कहता हूं कि नहीं साहब जिंदगी भर का सौदा है, अच्छा तो मां और बेटे का सौदा वो जिंदगी भर का है कि कुछ दिनों का है? बोलो, तो तूने मां भी देख के पसंद की होगी, क्यों? ए काली काली दांत दांत दत्त करूं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे मां नहीं मानूंगा, आज तक किसी ने कहा है कि चुपचाप जैसी मिल गई हमने चुपचाप स्वीकार कर लिया, ए मेरी मां, मां जैसी मिल जाए वो चले, क्यों? कि उसमें मेरी क्या गलती, तो किसकी गलती है? पापा की, अच्छा ये पापा की गलती है, तेरी नहीं है। अब ऐसा करना बेटा तू कि बाल बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया एक से एक बढ़िया पैदा करना, कोई काला कलूटा पैदा ना हो जाए। हो जाएगा तो मैं क्या करूं भाई, बाप माँ बाप भी हो जाएंगे तो तू क्या करे, बेटे भी हो जाएंगे तो तू क्या करे, क्यों अकेला तेरे जरा सा मौका मिला है तो सारी अकल तू यही दिखा देगा। सारे संयोग हमें जैसे मिल गए वैसे स्वीकार हैं, माँ बाप के, भाई बहन के, बाल बच्चों के, सबके स्वीकार हैं कि नहीं। गांव हम उस गांव में चुनके पैदा भए थे कि हमें इस गांव में पैदा कर, अच्छा हमें तो अच्छा दिल्ली में पैदा होते चांदनी चौक में तो बाप दादों का इतना बढ़िया मकान मिलता कि आज करोड़ों में तो जमीन बिकती, और हमारे उस गांव में पैदा हो गए कि उसमें 200 रुपये भी नहीं मिलते हमारे मकान के, क्या करें, हमने चुनके पैदा भए थे क्या, क्यों ना हमने गांव चुना, ना हमने जगह चुनी, ना हमने मां बाप चुने, कुछ नहीं चुना है। जो संयोग सहज जैसे मिल गए वैसे स्वीकार, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जो जैसे मिलने वाले हैं वे ही मिलेंगे। ये अच्छे अच्छे बहुत अकल लगा कर कहते हैं हमने 10-25 देखी और फिर देख के हमने पसंद करी, तो पसंद करी तो हमें भी तो दिखा दो भाभी जी को, तो तुमने कैसी पसंद करी, जब वहां देखते हैं तो बेवकू कैसी पसंद करी वो कोई बहुत देवांगना नहीं होती है, मेरा मतलब समझ गए ना। अरे दुनिया में तो जितनी लड़कियां हैं उतनी ही हैं, जो हैं वे ही हैं, बदलने वाली तो है ही नहीं, जितने लड़के हैं वे ही, उन्हीं में से एक इसके इसके साथ जाने वाली है तो सब वैसे ही रहने वाली हैं, क्या फर्क होने वाला है। लेकिन ये एक दफे भगवान की दिव्य, इसमें भगवान की दिव्य ध्वनि से क्या लेना देना, अरे है ना, भरोसे की बात है ना। जब मैं मुझे विद्यालय में पढ़ता था तो गर्मियों में अपने घर जाता था, घर जाता था तो प्रवचन करता था अपने गांव में, तब भी मैं ऐसे ही प्रवचन करता था, उन्नीस सा नहीं होता था। मेरी माँ भी सुनने जाती थी तो मेरी माँ में से पूछती थी कि बेटा तू ये बोलता है मंदिर में, ये सब शास्त्रों में लिखी है। मेरी माँ को ही भरोसा नहीं होता था कि ये शास्त्रों की बात में सुना रहा है कि गप्पे लगा रहा है, यानी कहती थी मेरे से कि ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं। मैंने कहा हाँ शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन तू शास्त्र तो देखता ही नहीं है कि तूने भेजा काय के लिए है मुझे, मैं 5 साल तक शास्त्र ही शास्त्र तो देखे, 24 घंटा देखता रहता हूं, अब मैं जब बोलूं तब भी देखूं। आप समझे ना, जो पहले पीछे नहीं पड़ेंगे उन्हें उस वक्त देखना पड़ेगा। हमें तो सब याद है, आगे की पीछे की गाथा, यहां यहां क्या लिखा, प्रयत्न सार में क्या लिखा, समय सार में क्या लिखा, 24 घंटा हमारे इसमें ही जाते हैं, क्यों हमें यहां देखने की क्या जरूरत, तुम देखो घर जाकर के, और जो हम बताया है वो मिले ना मिले तो हमसे कहना कि वस्तु का स्वरूप क्या है। तो इसको हम बहुत गहराई से विचार करें, समझें इस तत्व ज्ञान को कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार।